46, 42. सूर्यः अग्निः कं मरोत् देवः सोमः संध्या अहने दिशः कं कुः स्वयं धर्मः इति हि एते दह्यस्य साक्षिणः सूर्योऽग्निः खं मरुद्देवः सोमः संध्याहनि दिशः कं कुः स्वयं धर्म इति येते दह्यस्य साक्षिणः। धर्म शब्द का जो अर्थ है, प्रभुपाद जी ने न केवल यमराज लेकिन परमात्मा भी किया था, लेकिन यहां पर केवल यमराज है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। शायद अनुवाद में पूर्ण नहीं किया होगा। प्रभुपाद ने पहले अंग्रेजी में लिखा, फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ, तो हिंदी में अनुवाद करते करते कभी कभी कोई त्रुटियां भी आ जाती हैं। महा शब्द का अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं यमराज या तो फिर परमात्मा, जो कि यहां हिंदी में नहीं है, और अनुवाद में भी प्रभुपाद जी इसको परमात्मा ही कहते हैं, लेकिन यहां पर उनको यमराज कहते हैं, धर्मराज। श्री प्रभुपाद द्वारा सूर्य अग्नि आकाश वायु देवगण चंद्रमा संध्या दिन रात दिशाएं जल स्थल और स्वयं परमात्मा सभी इस जीव के क्रियाकलापों के साक्षी हैं। तात्पर्य, कुछ धर्मों के अनुयायी विशेष रूप से ईसाई लोग कर्म फल में विश्वास नहीं करते। एक बार हमारी एक ईसाई प्रोफेसर से इस संबंध में बहस हुई थी, जिसका कहना था कि अपराधी के दुष्कर्मों के गवाहों से सलाह के बाद ही उनको दंड दिया जाता है। पूर्व जन्म के कर्म फल भोगने के लिए उत्तरदायी साक्षी कहाँ है? ऐसे ही व्यक्तियों के लिए यहां यमदूतों का यह उत्तर दिया गया है। बद्ध जीव सोचता है कि वह कोई कुकर्म छिपकर चोरी से कर रहा है और कोई भी उसको पाप उसके पाप कर्मों को नहीं देख सकता, परंतु वह शास्त्र के द्वारा समझ सकता है कि उसके दुष्ट कर्मों के गवाह अनेक हैं, जिनमें सूर्य अग्नि आकाश वायु चंद्रमा देवता संध्या दिन रात दिशाएं जल और स्थल हैं, तथा स्वयं परमात्मा है जो उस दुष्कर्मों के हृदय देश में सदा बैठा रहता है। गवाहों की कहां कमी है? गवाहों और परम ईश्वर का अस्तित्व है, अतः उनके जीवात्मा अनेक जीवात्माएं उच्च ब्रह्मलोक में प्रोन्नत हो जाती हैं और अनेक नीचे पाताल लोक में जिनमें नरक भी हैं पतित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की विपरीतता या विभेद नहीं होने पाता, क्योंकि परम ईश्वर की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु यथार्थ रूप में योजनाबद्ध रूप से रखी हुई है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रियाच। इस श्लोक में उल्लिखित साक्षी गणों का उल्लेख वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी हुआ है। आदित्य चंद्र अनिल अनलह द्वौ भूमिर आपह हृदयम यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मेपि जानाति नरस्य वृत्तम्। अनुवाद दोहराइएगा। विष्णु दूतों ने कई प्रश्न किए थे यमदूतों से, जबकि यमदूत अजामिल की आत्मा को छीनने के लिए आए थे। विष्णु दूतों ने उनको रोका और कहा कि पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर हम देखेंगे कि क्या आप उस व्यक्ति की आत्मा को छीनने के लिए जो आए हो वो सही कार्य है या नहीं है। तो उनका पहला कार्य था कि धर्म क्या है ये पहले बताओ। धर्मस्य तत्वम, धर्म का तत्व, धर्म का सार क्या है। अधर्मस्य लक्षणम, दूसरी बात, अधर्म के लक्षण क्या है। तीसरी बात, कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि दंड के योग्य है, दंडनीय कौन व्यक्ति है। यहां पर क्या सभी कर्मी लोग जो कि सकाम कर्म करते हैं सभी दंडनीय हैं, या केवल थोड़े लोग उनमें से। तो पहले दो प्रश्नों का उत्तर यमदूतों ने दिया। उन्होंने कहा वेद प्रणिहितो धर्मः, जो वेदों की बातें हैं वो धर्म है। अधर्मस्य तद् विपर्ययः, और जो इसके विपरीत है वो अधर्म है। और वेद, वेदो साक्षात नारायण स्वयं भू इति सुश्रुमा, कि वेद ये साक्षात भगवान नारायण है, क्योंकि भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए स्वयं भू कहलाते हैं, जिनका जन्म स्वयं ही हुआ है। वेद, जैसे कि प्रभुपाद पिछले श्लोकों के तात्पर्य में बता रहे हैं, ये भी शाश्वत है, इनकी निर्मिति किसी समय पे हुई नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वेदों का जन्म भगवान श्री नारायण के श्वास से हुआ। उनका प्राकट्य अवश्य इस रूप में, इस ब्रह्मांड में इस तरह से हुआ, परंतु जिस तरह से भगवान नारायण स्वयं सनातन है, उसी तरह से उनकी उनके श्वास भी सनातन है और उसी तरह से वेद भी सनातन है। केवल समय समय पर जब सृष्टि का निर्माण होता है और जब सृष्टि को, सृष्टि के अंदर रहने वाले बद्ध जीवों के मार्गदर्शन के लिए वेदों की आवश्यकता पड़ती है, तो भगवान अपने श्वास से पुनः इस वेद को प्रकट कराते हैं, बस इतना ही है। इति सुश्रुमा, से हमने सुना है, यमराज यमदूत बताने लगे। और वैसे भी भगवान नारायण इस सृष्टि के मूल हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं के नियंत्रण में ये भौतिक जगत के तीन गुण चल रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बद्ध अवस्था में रहते हैं, उनको अपना अपना स्वभाव मिल जाता है तीन गुणों के संपर्क से। तो इस तरह से उन्होंने पहले दो प्रश्नों का उत्तर दिया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो धर्म क्या है, वेदों की वाणी। दूसरी जगह आगे चल के यमराज भी इसी बात को बताने वाले हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है, यह भगवान की वाणी है और इसके विपरीत जो है वो अधर्म है। बहुत सरल बात है। जैसे हमारे देश में भी, किसी भी देश में गुनाह क्या है, जो देश के कायदे कानून के खिलाफ है वो गुनाह है, और जो देश के कायदे कानून के से मिलता जुलता है वो गुनाह नहीं है, और जो इसको तोड़ता है, इस कानून को तोड़ता है, वो गुनाहगार ठहराता है, उसको दंड दिया जाता है। और जब ऐसे व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो फिर उसके कोई साक्षी होते हैं,
पुलिस उसको पकड़ती है, अदालत में उसको लाया जाता है और फिर कई साक्षी होते हैं, बुलाए जाते हैं, तो साक्षी आकर कहते हैं हाँ हमने देखा कि इसने चोरी की। और इस प्रकार से न्यायाधीश जो है अदालत में सबकी बातों को सुनते हैं और फिर निर्णय देते हैं कि ठीक है ये इसने चोरी की और उसको इस तरह का दंड मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि कई लोग, विशेष करके जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं जो कि कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, वो पूछते हैं कि अगर व्यक्ति को कर्मों के फलों के अनुसार फल मिलना है तो ये तो आवश्यक है कि फल मिलने के लिए सबसे पहले किसी को निर्णय देना चाहिए कि ये फल इस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और अगर उसको निर्णय देना है तो सबसे पहले उसको साक्षियों को बुलाना चाहिए, साक्षियों से गवाह लेकर फिर वो निर्णय दे सकता है। तो आपके कर्म सिद्धांतों में गवाह साक्षी कहां पर हैं? ऐसे एक ईसाई प्रोफेसर ने प्रभुपाद जी को पूछा था। तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए इस श्लोक में बराबर उत्तर दिया हुआ है। क्या उत्तर है? यमदूत अभी इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि कौन लोग यहां पर इस जगत में दंडनीय है, इसका पॉइंट बना रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि साक्षी हैं यहां पर, और फिर आगे चल के यमदूत बताने वाले हैं कि इन साक्षियों के गवाह के अनुसार, उनके सबूत, उनके प्रमाण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करते हैं, जो वेदों में बताए हुए आदेश हैं उनको तोड़ते हैं, और इसके साक्षी ये जो हैं, ये जब सामने आके कहते हैं कि हाँ इन्होंने ये दंड, गवाह, ये जो नियम है तोड़ा है, तो इनको दंड दिया जाता है, ये दंडनीय है। तो इस उत्तर की तैयारी के लिए यमदूत अभी यहां बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को देखने वाले, 24 घंटे देखने वाले कई साक्षी हैं। साक्षियों के 13 वर्ग यहां बताए हुए हैं। अब गिन के देख लीजिए कौन से हैं। सबसे पहले है सूर्य, फिर अग्नि, उसके बाद आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद चंद्रमा, सो मतलब चंद्रमा, देवतागण भी है, देवह, उसके बाद संध्या मतलब संध्या काल, फिर अहनि, अहनि मतलब दिन और रात दोनों है, दिशा मतलब ये दिशाएं, चार दिशाएं हैं, कम मतलब जल, कुह मतलब पृथ्वी, और स्वयं धर्म है मतलब स्वयं भगवान। तो 13 वर्ग हुए। अब अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अंधेरे में काम करूंगा, कोई मुझे नहीं देखेगा, लेकिन रात तो देख रही है ना, कोई कहेगा मैं दिन में करूंगा तो दिन में सब दिन के देवता देख रहे हैं, कोई बोलेंगे मैं दिन में भी नहीं रात को भी नहीं संध्या काल में करूंगा, फिर भी गड़बड़ है। अगर कोई कहेगा कि ठीक है कोई भी समय में करूं लेकिन छुप के करूंगा, पेड़ के नीचे जाके करूंगा, या मैं किसी गुफा में जाकर करूंगा, तो चार दिशाएं हैं, चंद्रमा है, अग्नि है, सारे देवता हैं, स्वयं भगवान है जो कि हृदय में विराजे हैं। तो प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि हम इन साक्षियों से कहां से बचकर जा सकते हैं। भले कोई व्यक्ति देश का कानून तोड़े तो उसके लिए कोई शायद साक्षी न हो, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़ा गुंडा अगर है, उसने बहुत बड़े खून वगैरह किए हैं, और कई साक्षी हुए भी हों तो ऐसे साक्षी सामने आने के लिए घबराते हैं, हमने अगर इसके खिलाफ साक्षी दिया तो फिर आगे चल के ये हमारी हत्या करेगा, ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा। तो ये भौतिक जगत क्योंकि अपूर्ण है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो यहां का जो न्याय की पद्धति है वो परिपूर्ण नहीं है, न्याय भी बराबर नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है, न्यायाधीश भी त्रुटि से पूर्ण मनुष्य हैं, साक्षी भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी झूठे साक्षी भी चले आते हैं, ऐसे भी देखा जाता है कितनी बार किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए, झूठा आरोप लगाने के लिए कोई झूठे साक्षी आ जाते हैं कि इसने ऐसे ऐसे किया, हालांकि बेचारा मासूम है, उसने कुछ किया नहीं। तो इस प्रकार से यहां न्याय की पद्धति दोषपूर्ण है, परंतु भगवान की पद्धति वो परिपूर्ण है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान के कायदे कानून से बच नहीं सकता। हमेशा हर परिस्थिति में कोई न कोई साक्षी अवश्य रहता है। अब देखिए इन 13 वर्गों के साक्षी में से कौन कहां से हम बच सकते हैं, और अंततः भगवान हमारे जो हृदय में हैं वो तो सभी को देख रहे हैं, उनसे हम कहां बच पाएंगे। वो कहानी आप कई बार सुन चुके हैं कि एक गुरु ने एक बार अपने शिष्यों को एक एक फल दिया हाथ में और कहा कि जाके ऐसे जगह में इस फल को खाओ जहां कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। सारे बच्चे इधर उधर फैल गए और एक एक करके लौट के आ गए और कहा कि ठीक है, मैं पहाड़ के पीछे गया, मैं जंगल में गया, मैं गुफे में गया, मैं घर के अंदर गया और ऐसे जगह में जाकर जहां की कोई मुझे नहीं देख रहा था मैंने इस फल को खा लिया, आपके आदेश का पालन किया। केवल एक बच्चा आया जो उस फल को लेकर आया हाथ में। गुरु ने पूछा कि तुमने फल क्यों नहीं खाया, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। तो बच्चा कहने लगा कि मैं ऐसे कोई जगह नहीं पाया जहां की कोई मुझे देखने वाला न हो। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उस शिष्य की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि तुम ही हो जिसने मेरे सारे उपदेशों को वास्तव में समझ लिया है, ग्रहण किया है। वैसे कभी कभी यमराज के दूत जो होते हैं यमदूत, उनसे भी कभी कभी गलती हो सकती है, ऐसे होता भी है कभी कभी। जैसे अब इस बार ये अजामिल की लीला तो ऐसे ही है, ये यमदूत भी थोड़ी गलती कर रहे हैं, उस व्यक्ति को वो यमराज के पास ले जाना चाहते हैं जो कि वास्तव में यमराज के दरबार में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये भी आखिर बद्ध जीव है। लेकिन इनकी भलाई इसमें है कि ये यमराज की सेवा कर रहे हैं जो कि एक महान वैष्णव है। महान वैष्णव के आदेश का पालन करके, उनकी सेवा करके इनका उद्धार धीरे धीरे होना है। हालांकि यमदूत दिखते हैं बड़े खतरनाक, बड़े कुरूप हैं, भयंकर उनका दृश्य है, परंतु क्योंकि वो यमराज की सेवा कर रहे हैं उनका भी उद्धार होगा। परंतु फिर भी वो इस जगत के बद्ध जीव है, इसलिए उनसे भी कभी कभी दोष हो सकते हैं और इस कथा में हम ये देख रहे हैं। परंतु फिर भगवान इसको ठीक कर देते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडुक्य ऋषि, वो अपने आश्रम में चुपचाप ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि अचानक कई चोर राजा के सिपाहियों से बचने के लिए दौड़ के वहां पर आ गए और उस आश्रम के अंदर छुप गए। मांडू के ऋषि अपने तपस्या में मग्न थे तो उनको पता नहीं चला कि ये कौन आए हैं, कहां गए हैं, कहां से आए हैं। बाहरी चेतना से वो मुक्त थे, अपने केवल अंतःकरण की चेतना में वो मग्न थे। तो राजा के सिपाही जो हैं उन चोरों को ढूंढते ढूंढते उनका पीछा करते करते यहां पर आए और उनको पकड़ लिया मांडू के मुनि के आश्रम में। जब पकड़ा तो उन्होंने सोचा कि शायद इस मुनि ने उनको यहां पर आश्रय दिया है, छुपा लिया है, शायद ये मुनि भी इनसे मिला जुला हुआ है, तो केवल मुनि बनने का ढोंग कर रहा है ये। तो उसको गिरफ्तार कर दिया, गिरफ्तार करके उसको भी सूली पे चढ़ाने वाले थे। और जैसे ही ये होने वाला था उसमें राजा के कानों तक खबर पहुंच गई। राजा बड़े हैरान हो गए, राजा दौड़ के वहां पर आए, अरे क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं है तो इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, ऐसे कैसे तुम इनको सूली पे चढ़ा रहे हो। फिर राजा ने बहुत क्षमा याचना की मुनि के चरणों में, कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे सैनिकों से, क्षमा कर दीजिए। तो मांडू के मुनि कहने लगे, राजन ये तुम्हारी गलती नहीं है और न ही तुम्हारे सैनिकों की गलती है। गलती किसकी है? यमराज की गलती है। अगर ऐसे हो रहा है, कोई व्यक्ति दंड मुझे गलत दंड दे रहा है जबकि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूं, आयु भर मैंने केवल तपस्या की है, मैंने पुण्य काम किए हैं, कोई पाप नहीं किया मैंने, तो ऐसे अवस्था में मुझे सूली पे चढ़ाए जाने की धमकी दी जाए, प्राय सूली पे मैं चढ़ ही गया, तो इसका मतलब है कि ये यमराज की कोई गलती है। तो सीधे गए यमराज के पास। तो यमराज ने उनका स्वागत किया, आइए मुनिवर, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? पहले ये बताइए कि आपने ऐसे क्यों व्यवस्था की कि राजा के सैनिकों को मेरे पास भेजा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मालूम कि मैं कोई साधारण चोर हूं और मुझे सूली पे चढ़ाने वाले थे, इसके पीछे क्या कारण है? तो यमराज ने फिर देखे उनकी किताब, कहा देखिए आप जब छोटे बच्चे थे ना, तो आपने एक कांटा लेकर एक कीड़े के शरीर को चुभ दिया था और इसलिए आपको भी यहां उस कर्म का फल मिल रहा था, मिलने वाला था, लेकिन अब बच गए क्योंकि आप मुनि थे। लेकिन इस ये जो चिंता आपके मन में हुई, ये जो दर्द आपके हृदय में हुआ कि आपको सूली पर चढ़ाया जाने वाला है, ये इस कर्म का फल है। तो मांडुक्य ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कि ये तो अकलमंद की बात नहीं है, अगर मैंने बचपन में जबकि मैं अबोध था ऐसे काम किया तो ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। बचपन में जो व्यक्ति काम करता है उसको पाप ठहराना नहीं चाहिए, उसको पाप समझना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे निष्पाप अबोध अवस्था में जो व्यक्ति मैंने जो पाप किए उसके लिए मुझे आप इतना बड़ा दंड दे रहे थे, इसका मतलब है कि आप ही खुद दंडनीय है, आपको दंड मिलना चाहिए। जैसे पशु होता है, पशु को दंड नहीं मिलता क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो एक छोटा सा बालक है, उसको भी भला क्या मालूम है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस दंड के योग्य समझा, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको पृथ्वी लोक पर एक शूद्र का जन्म मिलेगा। और फिर आगे चल के वो मांडुक्य ऋषि कौन बने? विदुर जी बन गए। मांडुक्य मुनि नहीं, यमराज जी वो विदुर बन गए। और जब तक कि विदुर यहां पर थे तो उस समय तक यमराज की जो गद्दी है वो खाली रह गई। तो उस समय और एक पितृ है, पितृलोक के निवासी, जिनका नाम था अरिमा, वो बैठे उनकी गद्दी पर। और जब विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए फिर वो भी वापस चले गए और यमराज की गद्दी फिर संभाल ली उन्होंने, फिर से यमराज बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी यहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं कि यमदूत शायद कोई गलती कर बैठे, भले यमराज भी कभी गलती कर बैठे, क्योंकि वो भी आखिर भगवान नहीं है, भक्त भी हो लेकिन भगवान नहीं है। केवल भगवान है जो हमेशा दोष मुक्त रह सकते हैं, जिनका ज्ञान संपूर्ण है, परिपूर्ण है। इस प्रकार से भगवान ने बनाई हुई पद्धति, क्योंकि इस ब्रह्मांड के लोग ही चलाते हैं, हालांकि उनकी पद्धति, उनका जो सिस्टम है, उनका जो कानून है वो सही है, परंतु चलाने वाले बद्ध जीव हैं, इसलिए कभी कभी इसमें कोई गलती हो सकती है, परंतु साधारण तो नहीं होता। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जब दुख आता है कि ये हमारे कर्मों का फल नहीं, शायद उनके कर्मों का फल हमको मिल गया, गलती से हमारे ऊपर आ गया। नहीं, हमको समझना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं वो हमारे ही पूर्व किए हुए पापों के फल मिल रहे हैं हमको। इस प्रकार से भक्त की भावना होनी चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। कृतम विपाकम, मैंने ही विपाक, ये पाप काम किए हैं और इनका फल भुंजान एवात्म, मैं ही अभी भोग रहा हूं, तो इसके लिए मैं किसी को, दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता। इसे केवल मेरे इन कर्मों के फलों को स्वीकार करते हुए, उनका भोग करते हुए, मैं आपकी अनुकंपा या कृपा की मैं प्रतीक्षा करता हूं, बस। तो यहां पर यमदूत बता रहे हैं कि 13 तरह के साक्षी हैं जो अलग अलग हमारे कार्यों को देख रहे हैं। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि मैं उपद्रष्टा हूं, अनुमंता हूं मतलब मैं अनुमति देता हूं, ऊपर से सब कुछ देखता हूं, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता मैं स्वामी हूं, भोक्ता मैं सब चीजों का भोग करने वाला हूं, और साथ साथ इसके मुझे परमात्मा कहते हैं। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, और इस देह में निवास करने वाला मैं परम पुरुष हूं। आत्मा को भी कभी कभी पुरुष कहा जाता है, पुरुष मतलब जो भोग करता है, क्योंकि आत्मा इस संसार में भोग करने के लिए आया है इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। हालांकि उसका ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप है कृष्ण का दास, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, परंतु वो पुरुष बनना चाहता है, ये कभी संभव नहीं है, परंतु क्योंकि इसका स्वप्न है इसको आत्मा को भी कभी कभी पुरुष कहा गया है। लेकिन इस पुरुष के परे एक और परम पुरुष है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं, मैं सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं, और मैं सब के कार्यों का मैं फल देता हूं, और उनके भ्रमण को भी मैं नियंत्रित करता हूं। वैसे जितने भी सारे ये साक्षी हैं वो यमराज के दरबार में अपने अपनी साक्षी देते हैं, और यमराज जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो कोई आंख बंद करके निर्णय नहीं लेते, उनके पास सारी व्यवस्था रहती है। तो ये जो ईसाई प्रोफेसर थे इनका उत्तर सही प्रकार से प्रभुपाद दे रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं कि कोई साक्षी नहीं है, बहुत सारे साक्षी यहां पर हैं, और ये यमराज इस सब का विचार करते हैं, विचार करने के बाद फिर वो अपना निर्णय देते हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि देखा जाता है कि कई बुरे व्यक्ति हैं जो बहुत पाप करते हैं, और पाप करने के बाद बड़े खुशी से जी रहे होते हैं, बल्कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। परंतु जो अच्छे व्यक्ति हैं और जिनको जीवन में बहुत दुख आ रहा है, वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को फलों को अब भुगत रहे हैं, और जो बुरे आदमी है जो इस समय ऐसे लग रहा है कि वो खुश हैं, भोग कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वो अपने पूर्व सुकृतियों का भोग अब कर रहे हैं। परंतु भगवान की चक्की बराबर चलती है, और इस समय अगर कोई बुरे काम कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसको अपने कर्मों के फल मिलके ही रहेंगे, और अगर कोई इस समय कोई सुकृति कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी अपने कर्मों का फल मिलना ही है। तो चाहे कोई अच्छे काम करे या बुरे काम करे, सबको अपने अपने तरह से फलों को भोगना पड़ेगा। जहां भक्ति की बात आती है, इसके लिए भी साक्षी है, इसके लिए स्वयं भगवान है। भगवान जब देखते हैं कि कोई भी भक्त थोड़ी सी भी सेवा कर रहा है उनकी, उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। पुराणों में इसके बारे में छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक बहुत असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, नास्तिक था, भोगी था, कभी भी जीवन में उसने भगवान का नाम लिया नहीं था, और उसको बहुत बीमारी हो गई, अपने मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मुझे अब जाना पड़ रहा है, और मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो जाते जाते क्यों ना भगवान का नाम लेकर जाऊं। तो अपने एक रिश्तेदार को बताया कि जाओ वहां से कोई माला लेकर आओ, हमने देखा कि भक्त लोग माला के ऊपर जाप करते हैं भगवान के नाम का, तो माला लेकर आओ, तो मैं कुछ नाम का जप करना चाहता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहता हूं। तो आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति, अरे आप भगवान का नाम लेंगे? हाँ हाँ लेकर आओ। तो बड़े जल्दी से वो आदमी गया, लेकिन इसके पहले कि वो लौट के आ गया, इस व्यक्ति का देहांत हो गया। फिर यमराज के दरबार में यमराज उनको यमदूत उनको लेने के लिए आ गए, तो उसमें वही घटना हुई कि यहाँ अजामिल के साथ हुई। उसी स्थान पर विष्णुदूत भी आ गए, तो विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोका कि इस व्यक्ति को नहीं लेकर जाओ। तो यमदूतों ने पूछा, क्यों? हम ऐसा कोई कार्य नहीं देखते हैं कि जिसकी वजह से आपको यहां उपस्थित होना पड़े। आप तो विष्णुदूत हैं, आप तो वैकुंठ के निवासी हैं। ठीक है, अब ये हमारा तात्पर्य है। उन्होंने शायद कहा होगा कि अजामिल के समय, ठीक है, अजामिल ने कम से कम नारायण का नाम तो लिया था, इसलिए आप वहां आ गए थे, हमको रोक दिया था। इस व्यक्ति ने एक बार भी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया था, तो फिर ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए आप क्यों आए? तो विष्णुदूत कहने लगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरा भगवान के नाम लेने की इच्छा रखी। क्योंकि उसने इच्छा रखी, शायद भगवान का नाम लिया हो या न लिया हो, लेकिन उसने बोला था कि मुझे लेना है भगवान का नाम, बस। तो देखिए, इसके लिए भी साक्षी है। हमारे मन की बात को भी भगवान जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। भले कोई अन्य साक्षी न जाने, लेकिन भगवान जानते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि हमारे शरीर का हर एक अंग एक एक देवता के नियंत्रण में रहता है। जैसे हमारे पलके हैं आंखों के, हमारे कान हैं, हमारी जिह्वा है, हमारे शौच करने की इंद्रियां हैं, वो सब एक एक देवता के नियंत्रण में है। और अपने अपने कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार वो देवी देवता गण हमारी इंद्रियों को चलाते हैं। कभी हमारी एक इंद्रिय में कोई गड़बड़ी हो जाती है, सोचो किसी की आंख में कोई गड़बड़ी हो गई, किसी के कान में, किसी के और कोई अंग में शरीर के, इसका मतलब है कि अवश्य ये कर्मों के अनुसार ये फल हमको मिल रहा है, लेकिन ये देवतागण इसके निमित्त हो जाते हैं। जो देवता उस इंद्रिय के स्वामी हैं या जो नियंत्रण करता है, वो उसमें कुछ गड़बड़ी कर देते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो देवतागण उनको भी मालूम है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हमारे कान को, आंख को, नाक को कुछ न कुछ तकलीफ कर देना हमारे कर्मों के अनुसार। परंतु हृदय की बात, अंतःकरण की बात, ये तो भगवान जानते हैं। इसलिए अगले श्लोक में, एक पिछले श्लोक में, इसी एक श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि तीन यमदूत क्यों आए थे अजामिल के पास, कोई बता सकते हैं? तात्पर्य प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, अजामिल की आत्मा को छीनने के लिए तीन यमदूत आए थे। तीन क्यों, दो क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं, एक क्यों नहीं? तीन तरह से पाप हो सकते हैं। कैसे? मन से, वाचा से, काया से, अपने शरीर से। हम मन में भी पाप कर सकते हैं, शब्दों से अपने बोल के भी पाप कर सकते हैं, और अपने कर्मों से, अपने शरीर से, देह से, काया से भी हम पाप कर सकते हैं। इसे तीन यमदूत आए थे। हालांकि कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि मन के पाप इतने भारी नहीं गिने जाते, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मन में हम पाप करते रहें, क्योंकि जो मन में बात है वो कृति में हम लाने ही वाले हैं, अवश्य लाएंगे उस बात को। ध्याये तो विषयान पुंस संघस्तेषु पजायते, तो ध्यान में जो है उसको हम कृति में लाएंगे ही। तो खैर, इसलिए जो हृदय की बात है वो भगवान पहचान गए कि इस व्यक्ति ने हृदय में कम से कम एक बार इच्छा की थी कि मेरा नाम ले, बस। तो भगवान बस केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे इस बद्ध जीव को वापस ले जाए, कैसे उसका उद्धार ले जाए, किया जाए। थोड़ा सा कोई चांस देखते हैं, थोड़ी झलक देखते हैं कि आशा है इसके लिए, तो भगवान के विष्णुदूत वहां पर चले आते हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। जैसे समझ लीजिए कि एक विद्यार्थी है, परीक्षा में बैठा है, और परीक्षा में पास होने के लिए, सफल होने के लिए 40 मार्क चाहिए। लेकिन 40 मार्क तो बहुत बड़ी बात है थोड़े विद्यार्थियों के लिए। बहुत कठिनाई से किसी न किसी तरह से 40 मार्क तक पहुंच जाते हैं। उनको अध्यापक को थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, 35 मार्क में आगे 5 इधर उधर इधर बढ़ाए बढ़ा कर चढ़ा कर उनको किसी न किसी तरह से दीवार के ऊपर धक्का मार के उनको 40 मार्क में पास करा देते हैं। लेकिन कई ऐसे हो सकते हैं जिनको 20 मार्क मिला हो, और अध्यापक सोचते हैं क्या कर सकते हैं, 20 से 40 कैसे बढ़ाएं। फिर भी कुछ न कुछ करके अगर अध्यापक एक ऐसे बड़े हृदय का हो तो किसी न किसी तरह से उसको इधर दो मार्क इधर पांच मार्क ऐसे जहां दो देना चाहिए उसको सात मार्क दे देता है, ऐसे किसी न किसी तरह से करके उसको 40 मार्क पर भी ला सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने खाली पेपर छोड़ दिया हो, एक भी शब्द नहीं लिखा हो, तो क्या कर सकता है परीक्षा वाला अध्यापक? इस सिलसिले में प्रभुपाद जी एक छोटी सी कहानी बताया करते थे कि एक बार एक विद्यार्थी था इतिहास के परीक्षा के लिए बैठा, तो इतिहास में पूछा गया था कि फलाना फलाने राजे का इतिहास बताइए, उसका राज्य कैसा था, कब उसने राज्य किया इत्यादि। तो इस विद्यार्थी ने ज्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं थी, इस बादशाह का नाम भी नहीं सुना था, कभी राजा का नाम नहीं सुना था, तो सोचा ठीक है खाली क्यों छोड़े पन्ने, तो लिखने लगा कई पन्ने भर दिए, पांच पन्ने दस पन्ने, और ऐसे लिख लिए उत्तर कि कोई दो शब्दों में कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बकवास लिख दिया, मतलब एक भी वाक्य में कोई मतलब नहीं था, एक भी वाक्य बराबर का नहीं था, उसमें ऐसे चार पांच शब्द जोड़ दिए जिनका कोई संबंध नहीं आपस में, हकबा बुकबा टुकटा टुकटा कुछ भी ऐसे ऐसे बस कुछ भी लिख दिया, जो मन में आया वो लिख दिया, एक शब्द का कोई अर्थ नहीं, और ऐसे पांच पन्ने दस पन्ने पूरे भर दिए। तो अध्यापक के सामने पेपर आया उसका, उसने देखा कि ये क्या है, ये कोई पहली बार ऐसे उत्तर देख रहे हैं, ये बादशाह की इतिहास ऐसे हमको नहीं मालूम था। तो सोचा कि इसे एक भी कुछ अच्छी बात नहीं लिखी, लेकिन फिर भी थोड़े मार्क तो उसको देने चाहिए, क्योंकि बकवास 10 पेज लिखने के लिए भी काफी बुद्धि का उपयोग उसको करना पड़ा है ना, इतना सब लिखना, उसने कष्ट लिया पहली बात तो ये कि 10 पन्ने लिखे उसने, कितना परिश्रम किया, कोई आसान बात नहीं है 10 पन्ने लिखना, और वो भी कम समय में इतना सब लिखना। दूसरी बात, 10 पन्ने बकवास लिखना आसान काम नहीं है, बकवास लिखने के लिए भी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, कहीं गलती से कोई सही शब्द आ जाए, तो इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग किया, इसलिए थोड़े उसको मार्क देने चाहिए। तो भगवान ऐसे है, कोई ना कोई कारण देखते हैं, किसी न किसी तरह से कुछ भी तो इसने भक्ति किया, गलती से भी किया हो, कुछ भी किया हो, चलो उसको थोड़ा कुछ दे दें, ये भगवान का स्वभाव है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति ने इच्छा भी की कि मुझे भगवान का नाम लेना है, तो उसका फायदा उसको मिल गया। तो कितना सरल भगवान बना रहे हमारे लिए मार्ग बाहर निकलने का, किसी न किसी तरह से प्राय ऐसे सोच ले कि बहाना ढूंढ रहे हैं, थोड़े से चांस ढूंढ रहे हैं हम सबको ले जाने के लिए, लेकिन हम सब ने इतनी जिद पकड़ लिया है, हट ले रहे हैं, हमको इधर ही रहना है। गृहव्रताणाम मतुर न कृष्ण परत स्वतो वा मिथो विपद्यत गृहव्रताणाम अदांत को भी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवणाना। गृहव्रताणाम, हमने व्रत लिया है कि हमारे गृह के जीवन में, संसार में, अंधकूप में हम हमेशा रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। कोई हमके भला, कोई भी आके हमको कुछ भी बोले, कितने भी अच्छे उपदेश सुने, लेकिन हम इधर ही रहने का व्रत लेते हैं, तो भगवान क्या कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं श्लोक में, उसके अंदर कृष्णमति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। कृष्णमति मतिर न कृष्ण, कृष्ण के प्रति उसकी मति झुकती नहीं है। परतः स्वतः वा, न अपने प्रयास से स्वतः, न किसी दूसरों के प्रयास से, मिथो विपद्य, न दोनों के मिलन से उसके मन में भगवान कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण जागृत ही नहीं होता, क्योंकि उसने इंद्र तृप्ति को के पथ को स्वीकार किया है बड़े दृढ़ता से, और ये व्रत लिया है कि इस मार्ग को कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, गलती से भी भगवान की भक्ति नहीं करूंगा मैं। तो वैसे देखा जाए तो गलती से भी हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सुकृति कर बैठता है। अभी देखिए भारतवर्ष में कम से कम ऐसा कोई भी आदमी है जिसने ऐसे सुकृति नहीं की हो? सोचिए, कोई भी हो सकता है आदमी जिसने एक बार भी कोई सुकृति नहीं की हो भक्ति की? हो सकता है ऐसे आदमी? अच्छा कर्नाटक की बात सोचिए, हो सकता है नहीं? क्यों? यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो जो बड़े से बड़े नास्तिक लोग थे, जो कुछ ना कुछ एक बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया होगा, उनको जाके चलो कुछ हमारा काम करना है, ये करना है, वो करना है। और अपने पहचान में कितने सारे लोग हैं जिनमें किसी न किसी का नाम गोविंद है, नारायण है, हरि है, कृष्ण है, त्रिविक्रम है, कुछ न कुछ जनार्दन है। तो गलती से भी हर एक व्यक्ति यहाँ पर कितने बार भगवान का नाम लेता है भारत में जन्म लेकर। और जो विदेश के लोग हैं उनको भी शायद कहीं ना कहीं ऐसी संधि मिलती हो। अभी हमारे मंत्रियों में से भी कितने लोगों के नाम भगवान के नाम है मिलते हैं, किसी का कृष्ण का नाम है, किसी का राम का नाम है। तो वो जब विदेश में जाते हैं उनके नाम भी अखबारों में आते हैं तो वहां के लोग भी पढ़ते हैं, लाल कृष्ण है ना, भगवान का नाम ले लिया ना। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसा पथ बनाया है कि केवल हम उनका उनकी सेवा अगर करेंगे तो बहुत जल्दी से आसानी से हम इस भौतिक जगत से हम दूर हो सकेंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमें चीटिंग करना है, हम छुपेंगे, हम ऐसे पाप करेंगे जिससे कोई हमें देख नहीं पाए, तो फिर ये बहुत बड़ा इसको दंड मिलेगा हमको। खास करके भक्ति मार्ग में आने के बाद अगर हम जानबूझ के ऐसे पाप करने का प्रयास करें तो हम ज्यादा दंड के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि इस समय हमें ज्ञान थोड़ा बहुत मिल गया है और मालूम होने के बाद अगर हम पाप करते हैं तो दंड ज्यादा मिलता है। प्रभुपाद एक छोटी सी बात बता देते कि एक व्यक्ति है जो जानता है कि गांजा पीना ये एक गुनाह है, तो अपने हाथ गांजा से गंदे नहीं होने चाहिए, तो दूसरे के हाथ में वो गांजा देता है, उसके हाथ से वो गांजा पी लेता है। और जब पुलिस पकड़ने आती, देखो कि मेरा हाथ साफ है, सुन लो, देख लो, मेरे हाथ में कोई गांजा का कोई गंध नहीं है। तो उस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि पहले हमने दूसरों के हाथों से कोई गलत काम कराए हो तो फिर भी हम उसमें भागीदार होते हैं, तो हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। भगवान की भक्ति के नियमों के आश्रय को स्वीकार करके हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। और फिर अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए हमसे तो भगवान ने तो हमको आश्वासन दिया ही है भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माश्च, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो नहीं। अगर भगवान का शरण लेने के बाद हमने अनजाने में कोई पाप कर लिया तो भगवान संरक्षण देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसे तुम डरो नहीं। इसलिए भगवान का भक्ति का मार्ग जो है ये हमारे लिए परम आश्रय है, परम सुरक्षा का मार्ग है। तो भगवान के पवित्र नामों का जप कीर्तन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, शुद्ध जीवन जीते हुए हम भगवान के धाम में जाने की तैयारी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
धर्म के अनुसार श्रीमद् भागवत में आजावल की कथा में आता है कि एक बार नाम लेने से ही सारे नियम भंग हो जाते हैं और भगवत विष्णु दूत लेने आ जाते हैं। तो ये वेदों का फिर कहा निर्णय रहा कि आदमी जो अपने क्रिया कर्म करता है, अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल मिलेगा? ये तो सारा टूट गया पूरा फल। ये कहीं गीता में कहीं भी लिखा है कि अगर एक बार लास्ट में नाम ले ले और पूरे दिन भी हम लोग कुछ मंदिर आने की जरूरत नहीं है, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, कितने ही पाप करते हैं लास्ट में एक नाम ले ले हो जाएगा पार, तो ऐसा कहाँ है? दूसरा प्रश्न, हम लोग जो श्राप दे देते हैं किसी को भी, जैसे उन्होंने श्राप दे दिया मांडवी ऋषि में, तो इतना बड़ा उनको भोगना पड़ा, ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक श्राप दे दिया और सारा सारा उनको पाप भुगतना पड़ा? उन दोनों प्रश्नों का कृपया आंसर अगर गीता या इसके ऊपर आधारित हो तो जरा बताए।
वैसे जो यमदूत अभी जवाब दे रहे हैं वो सही है कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलना है, और अगर वो पाप करेगा तो दंडनीय होगा, पुण्य करेगा तो उसको वो फल। के हम देखेंगे इस संवाद में कि विष्णुदूत कहेंगे कि एक और चीज है तो जो आप नहीं जानते हो, आप केवल पाप और पुण्य के बारे में जानते हो, लेकिन एक और चीज है और वो है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, जो कि इस भौतिक जगत से परे है। और ये जो छोटी छोटी कहानियां बताई जाती हैं, इनसे हम इनका उद्देश्य क्या है? भगवान की महिमा को समझने के लिए कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, भगवान के नाम से क्या नहीं हो सकता है। केवल एक नाम से अगर वो निस्सहाय भाव से बिना निरपराध भाव से अगर लिया जाए तो सारे पापों को नष्ट कर सकता है। परंतु जो भगवान का नाम अपराध सहित लिया जाता है उससे समय लग जाता है, क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम लिया नारायण निस्सहाय भाव से लिया, इस गणना से नहीं लिया कि मैं अभी भगवान का नाम ले रहा हूं और जितने भी सारे मैंने पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं एक नाम लूंगा फिर और पाप करूंगा। अगर इस भावना से, इस गणना से अगर कोई भगवान का नाम ले तो फिर वो फायदा नहीं मिलेगा उसको, बल्कि वो अपराध हो जाएगा नाम के प्रति। परंतु अगर कोई व्यक्ति आभास, नामाभास करे, जैसे अजामिल ने किया था निरपराध भाव से, तो फिर उसको उसका लाभ मिलेगा। परंतु हम पाप करते रहते हैं और इसलिए ये पापों का चक्कर जो है वो चलते रहता है। दूसरी बात, हम निरपराध भाव से नहीं लेते हैं इसलिए हमको पापों के फल हमारे क्षीण नहीं हो जाते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो भगवान के नाम का जो वास्तविक फल है वो पाप क्षीण करना नहीं है, न ही मुक्ति प्राप्त करना है। जैसे जब हरिदास ठाकुर एक जगह गए थे गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार के घर में, उन्होंने एक सभा, एक सत्संग बुलाई थी, सत्संग की सभा जिसमें कई लोग वहां पर आए थे। हरिदास ठाकुर ने हरि नाम के ऊपर एक व्याख्या किया, प्रवचन दिया, और एक वहां पर ब्राह्मण थे, तथा कथित ब्राह्मण जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, उन्होंने उठ के ऊंची आवाज में निंदा की हरिदास ठाकुर की कि ये कैसे संभव है, आप कहते हैं कि केवल एक नाम लेने से भगवान का व्यक्ति मुक्त हो सकता है, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जबकि जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनको कई जन्म कड़ी तपस्या करनी पड़ती है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो भी नहीं कर पाते कभी कभी, और आप बोल रहे हैं कि केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। अगर ये सही है तो मेरा नाक कट जाएगा, और अगर ये गलत है तो आपका नाक गिर जाएगा, कट जाएगा, और दो दिन बाद इस व्यक्ति का नाक कट गया। क्यों? क्योंकि उसको कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग से उसका नाक पिघल गया। तो हरिदास ठाकुर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो महान वैष्णव है, वो नहीं चाहते कि किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंच जाए, नुकसान हो जाए। तो खैर, हरिदास ठाकुर बता रहे थे कि देखो, मुक्ति प्राप्त करना भी ये हरिनाम का वास्तविक फल नहीं है, ये केवल उसकी छाया, उसके आभास से पाप नष्ट हो सकते हैं, और पाप नष्ट होने के बाद उसको शुद्ध अवस्था में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है केवल नाम के आभास से। जिस प्रकार से सूर्योदय की आवश्यकता नहीं होती है अंधकार, रात के अंधकार को नष्ट होने के लिए, सूर्योदय के पहले ही, संध्या के समय से ही तो थोड़े बहुत कीड़े आ जाती हैं, उससे अंधकार नष्ट हो जाता है, धुंध भी नष्ट हो जाता है, और फिर बाद में सूर्योदय हो जाता है, और जब पूरा सूर्योदय हो जाता है फिर तो बात ही क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के नाम के आभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और शुद्ध नाम का जो फल है, भगवान के नाम का सच्चा फल है कृष्ण प्रेम। अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध से लेता है लेकिन उसके मन में भोग की इच्छा है तो उसको भोग की इच्छा प्राप्त हो सकती है, उसको भोग मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध से मुक्त हो जाता है और नामाभास करता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस स्तर को भी पार कर चुका है और शुद्ध नाम का जप करता है तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। इसलिए ये कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक स्तर का नियम है हरि नाम का जप करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और ये जो पाप पुण्यों के फलों की बात है, ये भौतिक स्तर की बात है, और भगवान का नाम आध्यात्मिक स्तर में होने के नाते ये श्रेष्ठ है, इसलिए निम्न श्रेणी के नियमों को तोड़ सकता है, भंग कर सकता है, इनके फलों को नष्ट कर सकता है। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि कौन सा था वो शाप, अगर एक आदमी कोई शाप दे देता है तो फिर हमारे सारे कर्मों के फल गड़बड़ हो गए। जी नहीं, प्रश्न ये है कि हमें क्यों शाप मिलता है, किसी दूसरे को क्यों नहीं मिलता है? हमारे कर्मों के अनुसार ही तो हमको शाप मिलता है। कोई निमित्त चाहिए हमारे कर्मों के फलों को हमको मिलने प्राप्त करने के लिए, कोई निमित्त चाहिए। वो निमित्त कुछ भी हो सकता है। आखिर हमें जीवन में जितने भी दुख आते हैं वो दूसरे प्राणियों की वजह से ही आते हैं, सही है ना? कोई भी हो, कोई हमारा अपमान करता है, एक व्यक्ति ने किया ना। अगर हमें कोई बीमारी होती है, क्यों होती बीमारी? वो भी कोई कीटाणु अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो निष्पाप है। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, इसको कर्मों का फल दूंगा, इसके पेट में जाकर कुछ मैं गड़बड़ कर दूंगा। वो तो अपना धर्म कर रहा है, वो उसके स्वभाव के अनुसार वो बेचारे कीटाणु काम कर रहा है। उसको नहीं मालूम कि उसकी वजह से हमें कितना कष्ट हो रहा है, तो वो निमित्त हो गया है हमें कष्ट देने के लिए। तो उसी प्रकार से कभी कभी कोई एक साधु हमारे दुख को, हमारे कर्मों के फलों को प्राप्त करने के लिए हमें वो कष्ट दे सकते हैं, वो शाप के माध्यम से हमें कष्ट मिल सकता है। परंतु एक बात है, जब कोई भक्त हमको इस तरह से शाप देते हैं तो हमें ये साधारण कर्मों का फल ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक वैष्णव की कृपा समझ लेना चाहिए। क्योंकि वैष्णवों के श्राप से कभी भी किसी व्यक्ति की बुराई नहीं होती है। हालांकि बाहरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो भी सके, परंतु उस व्यक्ति की भलाई होगी। जैसे कि नारद मुनि ने जब नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप दिया था तो पेड़ की योनि में पेड़ बन जाओ, तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि पेड़ की योनि तो बहुत निकृष्ट योनि है, निम्न श्रेणी की योनि है, वहां चेतना काफी ढकी हुई होती है। तो किसको पेड़ की, तुम पेड़ बन जाओ ऐसा कोई शाप मिला तो कोई व्यक्ति खुश नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है। परंतु नारद मुनि के इस शाप में भी उन दोनों के लिए एक भलाई की बात थी, सबसे ऊपर की बात थी। वो क्या थी? कि उनका उद्धार भगवान कृष्ण स्वयं करने वाले थे और उनको भगवान का दर्शन होना था। तो सोच लीजिए, एक बद्ध जीव करोड़ों 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 साल यहां बद्ध अवस्था में रहा है, और अगर थोड़े हजारों साल वो एक पेड़ की योनि में अटक जाए, परंतु उसको पता चले कि इसके बाद, इस समय के बाद स्वयं भगवान मुझे आके दर्शन देंगे, मेरा मुझे मुक्त करेंगे, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? हम कहेंगे ठीक है, कोई भी योनि मंजूर है, कीड़े की योनि, पेड़ की योनि, कोई बात नहीं, अगर हमारा भगवान का सानिध्य मिलता रहे तो। अगर हम केवल राजा 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 बनते रहे करोड़ों सालों तक लेकिन भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सके, क्या फायदा? ऐसी योनि नहीं चाहिए। लेकिन कई सालों तक पेड़ की योनि मिले, कीड़े की योनि मिले, लेकिन भगवान के भक्तों का संग हो, भगवान का संग हो, तो वो ठीक है। इसलिए अगर ऐसे कोई शाप मिला भी तो हमें समझना चाहिए ऐसे महान भक्तों से आने वाले शाप ये उनकी कृपा होती है जिससे कि हमारी भलाई होगी। ये भी आध्यात्मिक स्तर की बात है। और आखिर अगर यहां पर विदुर आते नहीं तो महाभारत की लीला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाती। यहां पर विदुर का कितना महत्वपूर्ण सेवा था सारे महाभारत की लीला में। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके महान भक्त को उनकी लीला में शामिल करें, क्योंकि यमराज भी महाजन है, 12 महाजनों में से एक है, वो भी एक महान वैष्णव है। और जब भगवान कृष्ण यहाँ लीला करने आते हैं तो अपने धाम से भी भक्तों को लेकर आते हैं, साथ साथ यहाँ पर जो भक्त हैं उनको भी इकट्ठे लाते हैं, जगह जगह से एकत्र करके यहाँ से लाते हैं। तो भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त यमराज वो भी मेरी लीला में शामिल हो जाए। मैं पांडवों के साथ लीला करने वाला हूँ, पांडव तो मेरे नित्य पार्षद हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ और भी मुझे भक्त चाहिए, सहायक चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से देवी देवताओं को लिया, यहाँ से इनको लिया, उनको लिया, चुन चुन के सबको बुलाया, चलो चलो मेरी लीला में भाग हो जाओ, भाग ले लो। तो हर एक को जन्म लेने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई निमित्त चाहिए था। तो यमराज को ये निमित्त चाहिए था यहाँ आने के लिए, तो थोड़े समय के लिए वहां से छुट्टी ले ली उन्होंने, या भगवान की लीला में शामिल हो गए, उनके भक्तों की लीला में, फिर से वापस चले गए। ठीक है,
वैष्णव के हिसाब से तो हर एक को फायदा होगा, और जो अभक्त हैं उनके हिसाब से क्या होगा?
पहले भक्तों के श्राप काम करेंगे नहीं करेंगे क्या पता है, और अगर काम करेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्मों के फल उनके माध्यम से हमको मिल रहे हैं, वो केवल निमित्त है। तो जो भी है हमारे भलाई के लिए हमको मिल रहा है ना, कोई शाप हमको दे रहा है। जैसे दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया कि मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम कभी भी एक जगह में रह नहीं पाओगे। तो नारद मुनि का धन्यवाद, अच्छा हम प्रचारक है, हम तो घूमते रहते हैं। उसी प्रकार से एक कर्मकांडी ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कभी भी तुम्हें भौतिक सुख नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो अगर कोई अभक्त भी दे तो भक्त उसको अच्छा समझता है, बहुत अच्छा है। जैसे छोटे हमें एक श्राप मिला था, आपको बताए, सुनना चाहते हैं, किसी को नहीं बताया हमने आज तक। एक बार की बात, वो टेप रिकॉर्डर बंद कर दीजिए, आपको संभाल के रखना। और कई बार लोग बाहर से भी आते थे, वृंदावन से कोई चले आए, हमको थोड़े दिन रहना है, और फिर वो मंदिर के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो एक ऐसे व्यक्ति आए वृंदावन से और बड़ी लंबी दाढ़ी वगैरह रख के बोले, हम तो ब्रजवासी हैं, घंटी जानबूझ कर भगवान ने लगाई थी ताकि कोई पीड़ित अगर प्रजा में रहे वो घंटी बजाए समझ लें कि ये कुछ चाहता है। तो एक बार एक कुत्ता बजा रहा था, तो राम से क्या है, कोई खबर आई कि कुत्ता है, कुत्ता है, चलो लेकर आओ अंदर कुत्ते को। तो कुत्ता अंदर आया तो कुत्ते को पूछा, क्या बात है आपकी, क्या क्या दुख है आपको, आप भी मेरे प्रजा हो, क्या दुख है। बोले कि वो ब्राह्मण है ना वहां, वो मुझे बहुत कष्ट दिया, उसे बहुत मारा है, पीटा है, ये किया वो किया, बहुत शिकायत है, लंबी लिस्ट दे दी ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण को क्या दंड देना चाहिए, तो ब्राह्मण को बुलाओ। तो ब्राह्मण को बुलाया गया, साक्षी आए सब, आज की बात साक्षी ये वो सब लेके निर्णय लिया, ठीक है तो आपको क्या दंड मिलना चाहिए, आप तो गुनहगार हैं, आपने इस पशु के ऊपर आक्रमण किया, बहुत मारा इसको, हालांकि आप ब्राह्मण हैं ठीक नहीं, आपको दंड भी कैसे दिया जाए, ब्राह्मण हैं आप। तो फिर कुत्ते से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो कुत्ते ने कहा कि मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आप कलंजर जो आश्रम है उसके आप मठाधिपति, मठ है इसके मठाधीश आप इनको बनाइए। अरे ये दंड है पुरस्कार है क्या है, तो प्रभु रामचंद्र ने दे दिया, ठीक है। तो ब्राह्मण बड़े खुश, जो हाथी पे बिठाकर वो सब उनका वो हो गया, पट्टाभिषेक जो बोलते हैं वो हो गया, मठाधीश हो गया वो। तो फिर सभी लोगों ने पूछा कुत्ते से, ये ऐसा आपने क्यों किया, तो कहा कि देखो मैं पिछले जन्म में वो मठाधीश था, और मठाधीश रह के मैंने कितने सब काम करने पड़े मेरे को, इसलिए मेरी ये दशा हो गई। तो मैं सोचता हूँ ये ब्राह्मण है उसको श्राप नहीं दिया जा सकता, तो उसको वहां बैठाए ताकि आसानी से उसको मिल जाए। तो उस समय हमको वो कहानी याद आ गई, हमें कहा अच्छा हो गया मुक्त हो जाएंगे तो यहां से उस पद से, लेकिन क्या करें। तो खैर ऐसे कभी कभी श्राप होते हैं, वो भी अच्छे के लिए भी हो जाते हैं, कभी कभी भगवान की सेवा में कुछ ऐसे कर लेना पड़ता है, तो ऐसे खैर ये एक बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और उसमें ज्यादा अनुभव भी नहीं था, सीधे सीधे प्रेसिडेंट बन गए थे, हर तरह की परेशानी